جی وعلیکم السلام. جی بسم اللہ کریں. جی ارشاد فرمائے.
سر میں نے یہ پوچھنا تھا حضور نے رحمت للعالمین ہے
جی ہاں,
اور ہمیں تو یہ ہے نا کہ مطلب ہماری زمین میں پیدا ہوئے ہیں, اس لیے وہ تمام کائنات بھی اور ہماری زمین بھی, تو سر جو اور زمینیں ہیں ان کے لیے بھی تو وہ رحمت للعالمین ہے, کیا وہاں بھی وہ ان کی پیدائش ہے؟
جی ہاں, اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک مین ٹاور ہے جہاں سے سارے موبائل فونز کی لہریں نشر ہو رہی ہیں. اب دیکھیں نا, آپ کے کمرے میں اس وقت دنیا کے تمام نیٹ ورکس جو ہیں ان کی لہریں موجود ہیں, بشرطے کہ آپ کے پاس وہ سم ہو اور آپ اسے استعمال کریں, یعنی فون میں لگا کے آپ نمبر ڈائل کریں, یو فون کا کریں, وارث کا کریں, جیز کا کریں یا ٹیلی نور کا کریں, ٹھیک ہے. اب آپ دنیا میں کسی بھی بندے سے بات کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ ذریعہ موجود ہے, مین ٹاور, وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سارے دنیا کے ہر فون سے ریلیٹڈ ہے. اب اس میں یہاں پہ لفظ عالمین کو آج سمجھ لیں. عالمین کا مطلب ہم نے جہان لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. جہان کے علاوہ دیکھیں نا, عالم میں جوانی, عالم میں طفولیت, عالم میں ادھیڑ عمری, عالم میں جوش و جذبہ, عالم میں غیظ و غضب, عالم میں عشق و مستی, یہ ساری حالتوں کے لیے بھی تو لفظ عالم آتا ہے نا. تو عالمین, رب العالمین, جو ہر حال میں ہمارا رب ہے, ہر ہر حالت میں. اب ایک دن کا بچہ جو ہے وہ عالم طفولیت میں ہے, پھر وہ عالم نوجوانی میں, پھر عالم جوانی میں, تو یہ ہر عالم کی جمع بھی تو عالمین ہوا نا. عالم کا ایک مطلب حالت بھی ہے, عالم کا ایک مطلب جہان بھی ہے. ہم نے جہان ترجمہ کیا اور پتہ نہیں جہان کسے کہتے ہیں. اپنے ذہن کو وسعت دیں, اپنے ذہن کو کھولیں. رحمت للعالمین, رحمت کہتے ہیں کسی چیز کے تسلسل کو جاری رکھنے کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد عالی مقام ہے, ان اللہ معتی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, وانا القاسم, اور میں تقسیم کرتا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ مین پاور سٹیشن ہے, وہاں سے ساری اطلاعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں آتی ہیں, وہاں سے کائنات میں نشر ہوتی ہیں. کائنات میں صرف آپ کی دنیا نہیں ہے, تمام دنیائیں, تمام عالمین, اور پھر آگے ہر فرد کی تمام حالتیں. اب ذرا اس مفہوم کی گہرائی میں اتریں تو لفظ رحمت للعالمین کا مطلب ہو گیا سیکنڈ ان کمانڈ ٹو اللہ. اللہ رب العالمین ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. میں نے آپ کو حدیث عرض کی, ان اللہ معتی, اللہ مجھے عطا کرتا ہے, وانا القاسم, یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے
والا.
کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات واضح ہو گئی آپ کے ذہن میں, تصور واضح ہو گیا رحمت للعالمین کے. دیکھیں نا, پاور سٹیشن اللہ ہے, اللہ پاور سٹیشن ہے, آگے ریلے سٹیشن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. माफी चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं समझ आया क्या आपने फरमाया।
मुझे कि जैसे हमारी जमीन है ऐसे और भी बहुत सारी जमीनें हैं,
बेशक हैं,
तो वहाँ पे मतलब जी ऐसे ही पैदा हुए थे जैसे हमारी जमीन पे पैदा
नहीं नहीं नहीं, नहीं देखें बात समझें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ शायद आपकी समझ में आ जाए। देखिए अब टीवी स्टेशन से एक प्रोग्राम नशर हो रहा है, आपके यहाँ ब्लैक एंड वाइट है तो आप वही प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब फर्ज करें मेरे पास कलर टीवी है तो मैं उसे कलर में देख रहा हूँ। अब इसी तरह किसी के पास मोबाइल है तो वो मोबाइल की स्क्रीन पे उसी टीवी के प्रोग्राम को देख रहे हैं। गौर करें, अब एक जगह चेंज का टीवी है यानी ये मोबाइल स्क्रीन तकरीबन 3.5 इंच या 4 इंच की है, ठीक है, और एक आपके पास टीवी लगा हुआ है 14 इंच का, एक जगह लगा हुआ है 32 इंच का। अब एक टीवी में नीला रंग गालिब है, एक टीवी में सुर्ख रंग गालिब है, एक रंगीन में आगे वैरायटी देखे ना, कहीं वो सुनहरा है कहीं वो ट्रांसपेरेंट है। इस तरह सारी दुनियाओं में मखलूकात मुख्तलिफ रंगों से बनती हैं यानी मुख्तलिफ रंग उन पे गालिब हैं। अब इंसान हमारी और आपकी दुनिया में खाकी रंग गालिब है, आप देखें ना हमारी जिस्म की साख्त में खाकी रंग का गलबा है, कहीं वो हल्का है कहीं बहुत गाढ़ा है, जहाँ वो हल्का है वहाँ वो गोरे कहलाते हैं, जहाँ वो ज़्यादा गाढ़ा है गहरा है वहाँ वो हबशी कहलाते हैं, दरमियान में हम सांवले हैं, कहीं वो येलो रेस हैं, हैं सारे मट्टी के रंग। ये जो मट्टी के रंग हैं ये इस दुनिया की स्क्रीन का डिस्प्ले है। इसी तरह और दुनियाएं जो हैं वहाँ पे डिफरेंट कलर्स का गलबा है। असल प्रोग्राम तो अल्लाह के जहन से जारी है, अल्लाह के जहन से जारी प्रोग्राम हजूर अलैहिस्सलाम के जहन मुबारक में नजूल करता है और वहां से आगे कायनात में डिस्प्ले करता है। आगे सबकी अपनी अपनी स्क्रीन है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट देख रहा है, कोई रंगीन देख रहा है, और जो रंगीन देख रहा है किसी में सुर्ख का गलबा है, किसी में पीले का गलबा है, किसी में सब्ज का गलबा है, किसी में नीले का गलबा है, किसी में सब सुनहरे का गलबा है, कहीं पे इवन वो ट्रांसपेरेंट हैं। तो ये बात कुछ समझ में आई आपके?
जी सर, थैंक यू सर,
जी बहुत शुक्रिया जी।
जब हजूर अलैहिस्सलाम मक्का में तशरीफ लेके गए तो मक्का में उस वक्त 360 ऊंट थे। आप ने छड़ी उठाई और फरमाया कि हक आ गया और बादल मिट गया, बेशक बादल को मिटना ही था। और सर 360 ऊंट थे, कोई कांच के तो थे नहीं जो छड़ी से मतलब टूट जाते, कोई पत्थर के थे कोई सोने के थे, तो वो क्या हजूर अलैहिस्सलाम ने वो सरफ फरमाया?
जी हाँ, ये तसर्रुफ ही था ना, देखें उन्होंने एक छड़ी से एक बुत गिराया तो बाकी उनके जो 7 सहाबा कराम थे उन्होंने सारे बुत तोड़ने शुरू कर दिए, ठीक हो गया।
अच्छा,
यानी कि ये तसर्रुफ ही तो हुआ कि उन्होंने देखा सहाबा कराम ने कि हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा इज़ा जाल हक को वज़हकल बातिल, हक आ गया और बातिल भाग गया, और बातिल क्या था? ये जो लोगों के तसव्वुरात थे एक्सपेक्टेशंस किससे थी? बुतों से थी,
अकीदे
अकीदे और अकीदतें, ये अकीदे और अकीदतें, ये अकीदत और अकीदे दोनों का मादा अकद, अकद गिरा को कहते हैं। ये गिरें लगी हुई थी, उन्होंने गिरें खोल दी यानी अकीदे तोड़ दिए। लोगों का अकीदा था कि ये लात और मनात उजा और गुस्सा, पता नहीं क्या ये नाम है, जो भी जितने भी नाम हैं ये देवियां हैं और अल्लाह की बेटियां हैं, और उनसे वो तवक्कुआत रखते थे। जैसे ये हिंदुओं में लक्ष्मी देवी, काली माता, ये सारी देवियां, अल्लाह ने तबसरा किया कुरान में कि बहुत खूब, तुम अपने लिए बेटे पसंद करो और मेरे लिए बेटियां, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी कि देखे ना, हमारी बुनियादी सोचों पे अल्लाह ने कैसे कैसे तंज किए। ये तंज ही तो है कि बहुत खूब, तुम अपने लिए बेटे मांगते हो, मेरे लिए बेटियां, यानी जितनी देवियां हैं उनको मेरे साथ कनेक्ट कर दिया कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। ला हौल वला कुव्वता, अल्लाह ने इसलिए कहा गया लम यलिद वलम युलद, उससे ना कोई पैदा होता है ना कोई वो किसी को पैदा करता है, ना वो खुद किसी से पैदा हुआ है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि ये बुनियादी तसव्वुरात को दुरुस्त करना, ये था हुजूर अलैहिस्सलाम का असल मिशन। ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स मुआशरे ने बनाए हैं, ये जो हमारे आबाओ अजदाद के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अल्लाह ने निगेट किया है। हमें अल्लाह के दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को कबूल करना है। अगर हम करते हैं तो हम अल्लाह के बंदे हुए, और अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को इसरार करते हैं तो हम काफर हुए। अपनी मर्जी करना कुफर है। देखिए ना, अबू जहल क्या करता था? अबू जहल ने कहा तुम बात ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली मेरी दुकान खत्म हो जाएगी। लिहाजा वो अपनी मर्जी करता था, इसलिए उसको अबू जहल कहा। कि अजीब आदमी है, बात मान भी रहा है और इनकार भी कर रहा है, यानी अपनी मर्जी कर रहा है। ये जो अपनी मर्जी है, ये है सारा प्रॉब्लम। अल्लाह ने इससे मना किया, अल्लाह ने कहा मेरी मर्जी पे चलो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें अपनी मर्जी की इजाजत है। अगर तुम्हारी मर्जी अलाइन होगी अल्लाह की मर्जी के साथ, तो अल्लाह जरूर पूरी करेगा। और करें, अगर हमारी मर्जियां अपनी मर्जी के ताबे हैं तो ये मर्ज हुआ, मर्जी, मेरा मर्ज। देखें जरा इस लफ्ज की तर्जमा, मेरा मर्ज क्या है? मर्जी, मर्ज, मेरा मर्ज, अरबी अरबी कवायद के रू से ये मेरा मर्ज है। वाइजा मरज, तो जब मैं अपनी मर्जियां करता हूं, हो वह यशवाइन, तो तू ही है जो मुझे सीधा करता है। हमने क्या तर्जमा कर दिया? जब मैं बीमार होता हूं तो तू मुझे शिफा देता है। मराज अपनी मर्जियां करने वाला बंदा ही तो मरीज होता है। नया तर्जुमा है ना?
सर, वो जो हमारे भी अकीदों के और मौलवियों ने जो शुरू से हमारे दिमागों में ठूसा हुआ था या माहौल ने, सर अब्बा जी ने आपके वसीले से हमारे वो सारे बुत हमारे भी तोड़ दिए। आपका बहुत
अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का एहसान है, ये मेरे मुर्शिद का करम है। उन्होंने देखे ना, मेरा जहन बना के सब बहन भाइयों के साथ उनके जहन को सपोर्ट करने का एक जरिया बना दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, वरना मैं क्या और मेरी औकात क्या। मैं क्या कहता हूँ आपको, आपके मुर्शिद की बातें बता रहा हूँ कि हजूर मुर्शिद करीम ने ये फरमाया, और अल्लाह ने ये बात कही, इसके अलावा मेरे पास और है क्या? आपकी मोहब्बत है, आपकी शफकत है, आप तवज्जो देते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत से सुन लेते हैं, अगर आप उस पे अमल पैरा होंगे तो फ़ायदा किसका होगा? अगर मेरा फ़ायदा है तो मत करें, और अगर आपका अपना भला है फिर ना करने का कोई रीज़न बताएं मुझे।
सही है
ठीक हो गया?
हमारे दिमाग में जो भी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं,
हमारा काम करती है, बस यही मिशन है। देखें, रूहानी मिशन की डेफिनेशन, जब मैं उम्रे पे गया ना तो गुंबदे खिजरा को देख रहा था, वो कमरा हमने लिया हरम व्यू का, ठीक है, $100 एक्स्ट्रा पे करने पड़े, लेकिन किए क्योंकि ख्वाहिश थी, अल्लाह ने करम किया। तो मैं सारा दिन वह खिड़की में बैठा गुंबद खिजरा को देखता रहता था, इसी को मुराकबा कह लें, इसी को जो भी कह लें। तो मेरे जहन में एक दिन ये बात उजागर हुई, जाहिर है कि यह हजूर अलैहिस्सलाम का इनाम था मेरे लिए, मेरे जहन में ये बात आई कि रूहानी मिशन क्या है। मैं सवाल लेके वहाँ हाजिर था, वहां से एक इंस्पायरेशन आई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने लोगों के कॉन्सेप्ट्स दुरुस्त किए। किसके बारे में? आपकी अपनी जात के बारे में, आपके इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में, और आपके खालिक के बारे में। हमारे खालिक, हमारे अल्लाह के बारे में उन्होंने हमारे तसव्वुरात को वाज़े कर दिया। तो असल मिशन, रूहानी मिशन क्या हुआ? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये एक लफ्ज मुझे इंस्पायर हुआ कि असल गेम सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में और अल्लाह के बारे में, तीन दर्जे हैं, इन तीनों दर्जों पे अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो बताइए हम क्या सादतमंद ना हुए?
सर मैं एक क्वेश्चन करूँ आपको।
इरशाद।
हेलो।
जी जी इरशाद।
इसमें तदल्ला या तजल्ली का इंदराज साबका में होता है, जैसे अल इस्लामी खालिक और मखलूक के दरमियान रब्ता की रब की तशरीह है, यानी अल इस्लाम की लामीम की रमूज को समझने वाला अल्लाह की सिफ़त तदल्ला या रम से हुक्मरानी को पढ़ लेता है। तदल्ला का इल्म रखने वाला कोई इंसान जब अलफ़लामीम पढ़ता है तो इस पर वो तमाम असरार और रमूज मुंकशिफ हो जाते हैं जो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बयान फरमाए। अलफ़लामीम के जरिए साहिब शहूद पर वो असरार मुंकशिफ हो जाते हैं जो मौजूदात की रगो जान है, वो अल्लाह ताला की सिफ़े तदला को देख लेता है जो कायनात के हर जरे के लोग हैं। जबकि अहल शहूद को कितनी आप कह रहे हैं सर?
नहीं, मैं
जब
देखें इसमें दर्जे बताए हैं, तफसील और अहले शहूद,
यानी अहले शहूद जब किसी फर्द के अंदर लतीफा खफी में अल इस्लामीन को लिखा देखता है तो ये समझ नहीं लेता है कि इस नुक्ते में सफेद अदला की रोशनियां जरूरत है। ये जरा मैं समझाइए, रोशनियां अजल से अब तक तमाम वाकयात,
पहले तो सिफत तदल्ला को समझें। इसमें जो बुनियादी बात है वो है सिफत तदल्ला। सिफत तदल्ला से क्या मुराद है? तदल्ला का लुगवी मतलब है झुकाव, इंक्लिनेशन, यानी जब सिफात आपकी तरफ झुकती हैं तो क्या होता है? हम क्या हैं? अल्लाह की सिफात का मजहर है,
मजहर है।
जब ये सिफात हमारी तरफ झुकती हैं तो अपना इजहार करती हैं। अब देखें ना, ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरा नुत्क अल्लाह के सिफत नुत्क का अक्स है। आप सुन रहे हैं, ये अल्लाह की सिफत समी का अक्स है। तो मेरे और आपके अंदर क्या चीज काम कर रही है? अल्लाह की सिफात, अल्लाह की सिफात का ये जो झुकाव हमारे अंदर काम कर रहा है। देखे ना, आप देख रहे हैं, तो ये अल्लाह की सिफत बसारत, सिफत बसीर हमारे अंदर काम कर रही है ना। अब हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, ये एक दर्ज है। और अगर मैं देख रहा हूं और मेरे जहन में ये है कि ये अल्लाह मुझे दिखा रहा है, ये है सिफत तदल्ला। आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए, क्या मुझे अल्लाह दिखा रहा है लिहाजा मैं देख रहा हूँ। अब मेरी आंखें काम ना करें, मैं क्या देख सकता हूँ?
कुछ भी नहीं।
अगर अल्लाह मुझे ना दिखाए, अल्लाह दिखाने का मतलब, अल्लाह का दिखाना क्या है कि मेरे अंदर अल्लाह की सिफत बसारत काम कर रही है। ये है तदल्ला। अब देखे ना, हमने इसको बड़ा कोई ऊपर की दर्जे पे लिया हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं, ये आम जिंदगी में हर वक्त यही कुछ तो हो रहा है। हमारे अंदर अल्लाह की सिफात काम कर रही हैं, और ये काम तब कर रही हैं जब अल्लाह की सिफात हमारी तरफ झुकाओ यानी रजू करती हैं, यानी झुकती हैं, क्या नीचे की तरफ हमारी तरफ मतवजो होती हैं। यानी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ या इसलिए वो हो रहा है मुझसे, क्योंकि अल्लाह की सिफात तदल्ला फरमा रही है, यानी उनका झुकाव मेरी तरफ है, वरना मैं किसी सलाहियत को, किसी सिफत को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। देखिए ना, अल्लाह समी है, सुनता है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह की बसारत, ये सिफात है ना। अल्लाह रहीम है, अल्लाह रहमान है। अब यही सलाहियतें और यही सिफात जब मेरी तरफ झुकाओ, अल्लाह की सिफात का झुकाओ मेरी तरफ है तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। अगर वो मुझे मुंह मोड़ लें या मैं उनकी तरफ मतवज्जो न हूं, अब वो तो झुक रही हैं लेकिन मैं तवज्जो ही नहीं दे रहा, कसूर किसका हुआ?
सही बात, कसूर हमारा ही हुआ।
अल्लाह माफ करे, अल्लाह कसूर से माफ करे।
अच्छा, जो आप समय कहते हैं अल्लाह फ्लामीन के जरिए साहिब शहूद पर वो पूरी सरार मनकशी
जी, साहिब शहूद, साहिब शहूद यानी वो लोग जिनको अल्लाह ने शहूद अता किया है, वो लोग जिनकी बातनी निगाह काम करती है, वो जब किसी बंदे के लतीफे अख्फा में अलिफ लाम मीम देखते हैं, क्या क्या समझते हैं कि अल्लाह का मखलूक से रब्त, अलिफ लाम मीम अल्लाह का यानी खालिक का मखलूक से एक राबता है। अगर ये राबता टूट जाए, अलिफ लाम मीम जालिकल किताबो, अलिफ लाम मीम ये जो बाहमी रब्त है खालिक और मखलूक के दरमियान, ये वो किताब है, वो जालिकल किताबो, वो किताब है, वो सांचा है, ला रैब फी, जिसमें कोई आड़ा तिरछापन नहीं। जब आप इस आयत को यूं जोड़ के पढ़ते हैं ना अलिफ लाम मीम के साथ, अभी तो क्या हमने अंगूठा रखा हुआ है अलिफ लाम मीम पे, इसका मतलब नहीं पता। हजूर कलंदर बाब औलिया ने वाजे कर दिया, अलिफ लाम मीम का मतलब है खालिक और मखलूक का रब, فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ سانچہ ہے. ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، ہم نے ترجمہ کر دیا یہ کتاب. غور کریں ذرا، نہیں یہ کتاب نہیں، وہ کون؟ الف لام میم. وہ سانچہ فکر ہے، لا ریب فی، اس کے اندر کوئی آڑا ترچھاپن نہیں. ہدل للمتقین، اور یہ ہدایت بن جاتی ہے جب اس سانچے پہ آپ غور کرتے ہیں، تو ہدایت ہے ان کے لیے جو اپنے اندر ذوق رکھتے ہیں،
جو
متقی ہوتے ہیں، یعنی ذوق رکھتے ہیں، جو سمجھنے کا شعور رکھتے ہیں، جو بات کو سمجھنے کی کاوش کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو، جو مانتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ، بالغیب، جو ہر چیز اپنے غیب کے ساتھ موجود ہے. اب دیکھیں نا، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اب ایک غیب جو مجھ سے متعلق ہے، جو میری کیفیات ہیں، جو میری حالات ہیں، جو وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہیں، غیب ہیں، لیکن آپ کو یقین ہے. اب اسی طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی آپ کی کیفیات ہیں بچپن سے لے کر اب تک، وہ میرے لیے سب غیب ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ غیب موجود ہے آپ کے ساتھ. دیکھیں نا، ہم آم کے پیڑ کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس کی جڑیں نظر نہیں آتی، لیکن ہمارے یقین میں یہ بات موجود ہے. کیا اس پیڑ کی جڑیں ہیں؟ حالان جڑیں نظر آ رہی ہیں، لیکن دیکھیں، ہم عام زندگی میں ہر چیز کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ اس کا غیب لگا ہوا ہے. بل غیب، بل 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 غیب، غیب کے ساتھ. یومنون، جو مانتے ہیں کہ یہاں ہر چیز کے ساتھ اس کا غیب بھی شامل ہے. ہم صرف ظہور کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ لگے ہوئے غیب کو توجہ نہیں دے پاتے. اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یومنون بالغیب، وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہاں ہر چیز کے ساتھ اس کے ساتھ غیب بھی لگا ہوا ہے. جب ہم غیب کو دیکھنے کا شعور پیدا کر لیتے ہیں، غیب سے آشنا ہونے کی بات کو سمجھنے لگتے ہیں، تو ہم اللہ کے قریب تر ہوتے جائیں گے یا نہیں؟
اچھا، ہم غیب کو سمجھتے ہیں، فرشتے ہیں، روزے قیامت ہے، جنت دوزخ ہے.
جی ہاں، یہ سارے درجات ہیں، اور یہ سارے غیب کے درجات ہیں. کیا ہیں؟
مگر ہم اپنی جان سے زیادہ قربان رکھتے ہیں ان پر.
ہاں دیکھیں نا، بات بڑی سمپل ہے. ہم جب چیزوں کے غیب کو دیکھنا سیکھ جائیں گے، تو یہی صفت امتیاز ہے، یہی حبل الورید ہے، یہی چیز. جب ہم اللہ کی بات کو یہ تمیز کرنا سیکھ لیں گے کہ غیب کیا ہے، غیب کو جاننا ہماری اصل صلاحیت ہے، جس کا استعمال ہم بالکل نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے یومنون بالغیب، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، اور کب کہہ رہا ہے؟ آج سے 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے. کیا؟ کہ جو مانتے ہیں کہ یہاں ہر چیز کے ساتھ اس کا غیب لگا ہوا ہے. مثلا دیکھیں نا، آپ مجھے دیکھتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، تو میری یہ 73 سالہ زندگی ساری کی ساری غیب ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بندہ 73 سال کا تجربہ رکھتا ہے. गौर करें, मैं आपको देखता हूँ, मेरे जेन में आता है कि आपके 35 साल या 40 साल उम्र है, ठीक है, मेरे जेन में ये बात रहनी चाहिए कि इसके साथ 40 साल का गैब जुड़ा हुआ है, यौम नूना बिल गैब, वो मानते हैं कि यह हर चीज के साथ उसका गैब जुड़ा हुआ है। जब तक हमारे जहन में शौरी तौर पे गैब की बातों कोई तफहीम नहीं पैदा होगी, मैंने आपको आम की मिसाल दी, मैंने आपको आपकी मिसाल दी, देखे ना आप किसी बंदे से मिलते हैं आपको देखते ही नजर आ जाता है कि ये 25 साल का है, ये 30 साल का है, ये 50 साल का है, ये 70 साल का है, ठीक है, तो आपके जहन में जो ये जुमला आया ये असल में क्या है, ये जुमला असल में ये बता रहा है कि इस बंदे का 70 साल का 40 साल का 50 साल का गैब इसके साथ लगा हुआ है। अब हम उस बंदे पे तो तवज्जो दे रहे हैं लेकिन उसके गैब पे तवज्जो नहीं दे रहे, यानी जो चीज हमारे सामने नहीं है वो क्या हुआ, गैब हुआ। यहां से एक और बात सुन रखें, इल्मे हजूरी क्या है, देखें जो चीज मेरे लिए गैब है वो अल्लाह का हजूर है, क्या हजूर कलंदर बाबा औलिया ने फरमाया, जो चीज मेरे और आपके लिए गैब है वो अल्लाह का हजूर है, यानी अल्लाह के सामने हाजिर है। गैब में उस तरह जानना जिस तरह वो अल्लाह के सामने हाजिर है, इसी को इल्मे हजूरी कहते हैं। ये इल्मे हजूरी की कैसी डेफिनेशन की है हजूर कलंदर बाब औलिया ने, देखे ना कितना आसान कर दिया बात की को समझना, देखे ना इल्मे हजूरी, इल्मे हजूरी भाई, इल्मे हजूरी वो इल्म है कि जो चीजें जिस तरह से अल्लाह के सामने हाजिर हैं उनको उस तरह जानना इल्मे हजूरी है। ठीक हो गया,
ठीक हो गया
जी, और कोई सवाल?
आप क्यों कहते हैं अहले शहूद में जब किसी फर्द के लतीफा कफी में अलिफ लाम लिखा देता है, इस नुक्ते में सबसे तजर्बे की रोशनियां जज़ब है, उसको नजर आ जाती है अहले शहूद को
जी। अहले शहूद क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, वो लोग जो देखने की सलाहियत इस दर्जे पे बेदार कर लेते हैं, यानी अब हम देखते हैं लतीफा नफसी की रोशनियों में हम देखते हैं निचले सतह पे, और जब आदमी अपने देखने की सलाहियत को लतीफा कल्बी, लतीफा रूही, लतीफा सिरी से लतीफा खफी तक उठा लेता है तो उसको नजर आ जाता है कि इस बंदे के अंदर अगर वो अलिफ लाम मीम लिखा हुआ देखता है, क्या देख रहा है कि अल्लाह का मखलूक से एक ताल्लुक है, अल्लाह का मखलूक से ताल्लुक अगर किसी को दिखना शुरू हो जाए उसकी नजर कहाँ जा रही है, उसकी नजर सीधी लतीफा खफी पे पड़ रही है,
खफी होता है ना सामने, अख्फा होता है सर पे,
नहीं नहीं ये सामने अख्फा वख्फा इसे छोड़ दें, मतलब ये दर्जे हैं अंडरस्टैंडिंग के। आप देखना बात ये है कि ये लतायफ का बयान मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूँ कि वहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास ये चार चीजें, इन्हीं को चार नहरें कहा गया, जब वहमा ख्याल बनता है तो ये एक साख्त है, इसे लतीफा अख्फा कहते हैं, जब ख्याल तसव्वुर बनता है तो ये लतीफा सिर्री कहलाता है, जब तसव्वुर एहसास बनता है तो ये लतीफा नक्सी कहलाता है। जब एहसास वापस खया तसव्वुर में ढलता है तो ये लतीफा कल्बी कहलाता है। जब तसव्वुर वापस ख्याल में ढलता है तो ये लतीफा सिर्री कहलाता है। और जब ये ख्याल वापस तसव्वुर में ढल रहा होता है तो ये लतीफा खफी कहलाता है। ये बनावटें हैं, छह बनावटें, खफी और अख्फा का एक जोड़ा है। खफी नसूली हालत में है, अख्फा सऊदी हालत में। ठीक हो गया?
ठीक हो गया
जी। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी मैंने ये याजूज और माजूज के लफ्ज़ कुरान पाक में तीन बार आया, तो उसके बारे में पूछना था ये कौन सी कौम है।
असल में इसके बारे में जो बातें बताई गई हैं वो ये हैं कि हजरत नूह के तीन बेटे थे, ठीक है, साम हाम और याक्स। सेमिटिक नेशंस जितनी भी हैं वो हज़रत साम की औलादें कहलाती हैं। हाम जो हैं वो अलहदा, ये वाइट रेसेस और ये वो सारी जितनी भी हैं। याफ्स वो नेशंस हैं जो चपटी नाक और जर्द रंग वाले हैं। इन्हीं के बारे में याजूज माजूज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यानी गोया मतलब है, एक दफ़ा मैंने हजूर मुर्शिद करीम से दरियाफ्त किया कि उन्होंने कहा कि हाँ ये चाइनीज कौम के बारे में, मैंने कहा जी ये येलो रेसेस तो यही हैं, ये मंगोल और ये चाइनीज जो हैं ये देखे ना, आज अब इनका दौर आ रहा है, ये पूरी दुनिया पे हुक्मरान हो रहे हैं। तो उलमाए बातन के नज़दीक ये चाइनीज जो हैं यही याजूज माजूज कहलाते हैं।
सर मैंने एक जगह पढ़ा था कि कोई स्टॉबिन है, उन्होंने बताया कि जो एलियंस है ना ये भी मे बी पॉसिबल ये हैं याजूज माजूज।
ये ऐसे ही, ये ऐसे ही फालतू की बात है। एलियंस का क्या मतलब है? एलियंस का क्या मतलब? यानी जो नहीं नहीं मतलब है किसी दूसरे सियारे से आए हुए लोगों को एलियंस कहा जाता है।
जी
ठीक है,
वो कहते कि जो नहीं नहीं हमारे से इतनी ज्यादा है फिर वो हो सकता है कि दूसरे सियारे से ही आना हो।
तादाद के हवाले से इस वक्त चाइना दुनिया में नंबर वन है। हाँ या नहीं?
दुनिया में तो वाकई वो नंबर वन है।
बस
मगर एलियंस तो कहते हैं खा जाएंगे इंसानों को, कोई सही तरह तो इंसान तो नहीं होंगे वो।
अल्लाह बेहतर जानता है जी, इस बारे में मेरा इल्म सिफर है।
बस हमारा भी इल्म सिफर है, हम आपसे पूछ रहे हैं।
नहीं इस बारे में मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में क्या तबसरा करूं। एलियंस के बारे में हजूर मुर्शिद करीम का इरशाद सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जिन्नात इंसान से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। ये जो आपको यूएफओस का कॉन्सेप्ट मिलता है असल में ये जिन्नात की कारस्तानी है। यानी उन्होंने बहुत तामीरी काम किया है, इंसान बहुत तखरीबी काम कर। देखे ना आपने एटम बम बनाए हैं, उन्होंने नहीं बनाए जी।
बाकी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है।
जी और कोई सवाल?
जी अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके?
जी सर अल्लाह का करम शुक्र है, प्रधान जी नजर करम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए आप ठीक
है? अल्लाह का इनाम है
सर। ये किताब लोह कलम के अंदर अल्लाह के जो अल्लाह का जो लफ्ज है उनके हरूफ के बारे में कुछ जिक्र है, मेरे ख्याल में सिर्फ अलिफ का जिक्र है, तो बाकी जो हरूफ हैं उनकी भी इसके अंदर कोई तशरीह की गई थी या
नहीं? वहाँ पे कोई तशरीह नहीं की गई थी, जो तशरीह की गई थी वो काट दी गई थी। हज़ूर मुर्शिद करीम ने मुझे बताया कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जब मैंने किताब की सूरत में उनको दिखाई तो उन्होंने कटवा दी कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हटा दो। तो वो असल में हमारी फिक्र की तवानाई तरक्की पे और उसकी डेवलपमेंट पे डिपेंड करते हुए उन्होंने उसको डिलीट कर दिया कि जब शऊर बुनियादी सतह से ऊपर उठ के इसको समझेगा तो फिर ये राज समझ आ जाएंगे।
ठीक,
इसलिए जब उन्होंने काट दिया तो हम क्या तबसरा करें।
जी सही सर। और सर ये जो नहर तस्वीर है ये जो है ये हाफ़ज़ा कहलाती
है? जी हाँ, ये हाफ़ज़ा भी कहलाती है। ये असल में किसका हाफ़ज़ा है? ये अल्लाह का हाफ़ज़ा है, अल्लाह का प्रोग्राम जो अल्लाह के हाफ़ज़े में जिस तरह महफूज है वहाँ से वो नहर तस्वीर, यानी कि उस हाफ़ज़े से अल्लाह ने एक प्रोग्राम तश्कील दिया, वो प्रोग्राम नशर हो रहा है। अब वो प्रोग्राम जब मेरे और आपके जहन में नजूल करता है तो इसी को देखें, नहर तस्वीर को वाहमा कहा है, नहर तजरीद को ख्याल कहा है, नहर तशहीद को तसव्वुर कहा है और नहर तजहीर को एहसास कहा गया है। यानी असल में ये चार चीज़ें हैं जिनको अहले तसव्वुफ ने इस टर्मिनोलॉजी के जरिए बयान किए। हजूर कलंदर बाब औलिया ने वो सारी टर्मिनोलॉजी इस्त्री कर दी, उन्होंने बताया कि ये नहरे तस्वीर से मुराद है अल्लाह की तरफ से आने वाली तलात। जब हमारा जहन उनकी तरफ मतवजो के उनको वसूल कर लेता तो ये ख्याल कहलाता है, इसे नहरे तजरीद कहलाए। जब वो ख्याल जहन में प्रोसेस होता है और वो नहरे तजहीर तशहीद कहलाता है, यानी कि गोया तसव्वुरात नजर के सामने आने लगते हैं, तशहीद यानी कोई चीज शहूद का बायस बन रही है। अब उसके बाद जब वो दर्जा एहसास पे उतरता है तो इसको नहरे तजहीर कहा, यानी कोई चीज मजहर बन रही है, यानी आपके तसव्वुरात जब एहसास का रूप ढालते हैं तो वो तसव्वुर से मजहर बनते हैं, इसको नहरे तजहीर कहा है। ये सूफिया कराम की टर्मिनोलॉजी थी, उसको उन्होंने वॉश करके वाहमा ख्याल तसव्वुर और एहसास के अल्फाज हमें अता किए। मैं ये समझता हूँ कि ये समझना ज्यादा आसान है। वाज़े हो गई बात?
जी सर। सर ये लास्ट संडे को जो है मैं कराची में था और अब्बा जान वहाँ पे सबक की क्लास जो है वो पढ़ा रहे हैं जो है
माशाल्लाह।
तो वहाँ पे जो है वो क्लास को जो है उन्होंने आई थिंक लास्ट क्लास में जो है उससे पहले जो क्लास थी उसमें असाइनमेंट दी हुई थी सूरह फातिहा और सूरह नास की जो है ना आपने तर्जमा जो है वो आपने पेश करना है।
जी
आई थिंक वो तो वो वहाँ पे जो स्टूडेंट खास तौर पे जो सूरह ये फातिहा थी उसमें जो आम रूटीन के तराजम यूज होते हैं जो किए गए हैं वो पढ़ रहे हैं।
जी जी।
तो आपने जो सूरह अल्लाह ताला के जो अल्फाज हैं रहमान और रहीम की जो क्या कहते हैं वजाहत की है वो तो लोह कलम के ऐन मुताबिक है।
रहे नसीब।
तो मैं जी तो मैं जो उनको सुन रहा था तो ये आया कि भाई जिस तरह से आपने ये अल्लाह तरह के जो अस्मा है रहमान और रहीम और उसमें कलंदर पापा और वाजे लिखा है कि वो आई थिंक ये लोह कलम का कुन फायकून टॉपिक है जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जब कायनात बनाई और कुन फरमाया तो अल्लाह ताला की इसमें रहीम की कुव्वत तसर्रुफ ने हरकत में आकर कायनात के तमाम अज़ा और ज़र्रात को शक्ल सूरत बख्शी।
बेशक।
इसी तरह से जो है उन्होंने जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया उसमें उन्होंने जो है वो रहीम का जो जिक्र किया वो उन्होंने कहा कि
सही। आपको हजूर मुर्शिदे करीम की असाइनमेंट में हिकमत नजर आई। सूरह फातिहा पहली सूरत है और सूरह नास आखिरी सूरत है।
जी, जी 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 जी।
आपकी बात सुन के मेरे अंदर जो बात उभर रही है वो ये कि हरफ़े अव्वल और हरफ़े आखर को मिला दिया।
जी बिल्कुल ऐसे।
देखे ना मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से लेके वन नास तक सब सत्यानाश किया मैं। रोना आता है अपने हंसने पे। मुकाम तो रोने का है। बे इसमें अल्लाह अल्लाह के नाम पे जो रहमान और रहीम है यानी तख्लीकी निज़ाम को बनाने वाला और तख्लीकी निज़ाम को चलाने वाले अल्लाह के लिए ये है तस्मिया का असल मफहूम है। ये सूरह फातिहा की पहली आयत है ऑफिशियली कुरान की पहली आयत है और यही अंबिया कराम की तर्ज फिक्र है। मैं नहीं कह रहा हजूर कलंदर वावौलिया ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह की बात बिस्मिल्लाह शरीफ की बातनी तफसीर ये है। याद आ गया ये जुमला कलम में साफ लिखा बिस्मिल्लाह शरीफ की बातनी तफसीर कि वो जब भी किसी चीज की तरफ मतवजो होते थे उनको ये एहसास आदतन होता था कि इस चीज का मुझसे बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है मैं इससे अल्लाह वास्ते मुखातिब। हजूर मुर्शिद करीम ने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया भी केरफ अल्लाह सोचना सीखे। गौर करें बात खत्म कहां की के रफ अल्लाह सोचने से आगाज होता है उद्दलिल मुत्तकीन सॉरी सिराते मुस्तकीन कि मुझे इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का रास्ता अता कर हमने कर दिया सीधी राह वहां से चल के कहा कि वन नास किस चीज से पना मांगी आपने वन नास औज़ु बिल्लाहि रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी वसवसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास वसवसों से निजात। इस मुर्शिदे करीम के इस हुक्म की हिकमतों पे मैं बस क्या कहूँ वजद में आ गया। यानी उन्होंने आपकी तवज्जो सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक दिलाई। अल्लाह करे कि हमें ये तफहीम हासिल हो जाए।
आमीन। किताब शरह लोगो कलाम के अंदर आई थिंक लेक्चर नंबर 20 है, इल्हामी किताबें
जी,
के अंदर अफजान ने कहा है कि हुजूर के अंदर बबोल ने फरमाया कि वो यानी मफहूम है कि कुरान को समझने का जो उन्होंने तरीका बताया कि या अल्लाह समझा दे या जिस भी कुरान नाजिल हुआ है वो समझा दे। तो एक दफा जो है वो आई थिंक ये रूहानी डाइजेस्ट में आया था कि अब्बा जान ने फिर उनसे सवाल किया था हुजूर के अंदर बबोलिया से, जब ये बात उन्होंने की कि हुजूर आपने कुरान कैसे समझा, तो हुजूर कलंदर बाप बोली ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकन सबकन कुरान मजीद। हां
हां जबरदस्त।
तो इतनी बड़ी हस्ती के साथ हम अटैच हैं लेकिन हमारे
जी देखे ना, सीधी सी बात है, कुरान वही है। क्या है?
वही
है। वही क्या है? अल्लाह की तरफ से खालस तरीन फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। उसको समझने के लिए हमें वो जहन दरकार है जो हजूर अलैहिस्सलाम को हासिल था। भाई उनको हासिल था तभी तो उनपे वही आई। अब यही जहन शायद की मक्खी को भी हासिल है और यही जहन जमीन को भी हासिल है। वह माओहा कहा या नहीं? कुरान ने कहा कि नहीं कि जमीन कहेगी मुझ पे तो वही की गई। हम जमीनी मखलूक हैं और ये शऊर नहीं रखते। कौन सा? वही की तर्जों को समझने का। देखिए हम अपने शऊर के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और ये दुआ करते हैं, दुरूद शरीफ असल में दुआ है। क्या? सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही, ऐ अल्लाह अपने हबीब से मेरा ताल्लुक जोड़ दे। वसल्लम और पूरे का पूरा। जब ये अल्लाह रब्बे करीम इस दुआ को कबूल फरमा ले तो और आपको हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल हो जाए, क्या होगा? होगा ये कि आपको वही समझ आनी शुरू हो जाएगी। क्या कहा मैंने? हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल हो जाए तो आपको वही समझ आनी शुरू हो जाएगी। यानी वही, यानी कुरान वही है और वही की तर्जों को समझने का जो शऊर हजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता किया हुआ था, किसी और को नहीं किया। अब अगर उनकी उम्मत हजूर के साथ ये निस्बत हासिल कर ले तो क्या उसको कुरान की तफहीम का वो दर्जा हासिल नहीं हो जाएगा? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा के मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला, उसे राइज करके उससे ऊपर उठ के ये समझना नहीं शुरू कर देंगे कि इसमें रहमान और रहीम अल्लाह की सिफात हैं जो तख्लीकी निज़ाम को बनाने और चलाने वाले अल्लाह से मुताल्लिक हैं और मैं उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ? ये मफहूम आप पे वारिद होगा कब? जब आपकी निस्बत हजूर अलैहिस्सलाम से कायम हो जाएगी। जब तक आपको हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल नहीं होगी आपको ये वही समझ नहीं आ सकती। हाँ या नहीं?
जी सर।
देखे ना आपने कलमा पढ़ के क्या इकरार किया कि मैं हजूर अलैहिस्सलाम की तर्ज फिक्र को अपना कर अल्लाह को इलाह मानूंगा। यह है कलमा तैयबा का असल मफहूम। क्या? कि मैं حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز فکر کو اپنا کر اللہ کو الہ مانوں گا, الہ مانوں گا. اللہ کو الہ ماننا ہی تو فقیری ہے. یہ فقیری کا سب سے آسان ڈیفینیشن ہے, اللہ کو الہ مان لینا ہی فقیری. ہم اللہ کے فقیر بنے تو صحیح, پھر دیکھیں اللہ کیا نوازتا ہے, اور اللہ کیسا نوازتا ہے اور کتنا نوازتا ہے آپ اور میں اندازہ ہی نہیں کر سکتے. بھائی ہم تو اپنی مرضیاں کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ نے منع کیا مرضی نہیں کرو, اپنی مرضی نہیں کرو, میری بات سمجھو. ہم اللہ کی بات سمجھنے کے چکر میں پڑ جائیں, ہمارے نصیب سنور جائیں.
سر ایک دفعہ ابا جان سے ملاقات کے لیے میں گیا تو وہاں پہ ابا جان کے لیے میں نے وہاں پہ ایک عرضی پیش کی کشف القبور کا مراقبے کے لیے نا, تو کچھ دنوں بعد جو ہے مجھے ابا جان کی طرف سے رپلائی آیا کہ آپ جو اسباق ہیں وہ آپ کریں سونے سے پہلے دروش ہی جو ہے اس کا جو ہے آپ کریں.
اصل چیز کیا ہے, سلسلے کے اسباق کی پابندی اور درود شریف. درود شریف کیا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تو میرا تعلق اپنے محبوب, اپنے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ دے, اور وہ بھی پورے کا پورا. جب آپ اس جذبے سے درود شریف پڑھتے ہیں, اس دعا کو ذہن میں رکھ کے درود پڑھتے ہیں, آپ یقین مانیں کہ میرے مشاہدے میں, میرے علم میں ہے کہ جس کسی نے بھی اس جذبے سے یہ درود شریف پڑھا کہ بارِ الٰہ تو اپنے محبوب سے میرا تعلق جوڑ دے, اللہ ضرور جوڑتا ہے. لیکن اگر آپ ریکمینڈیٹری نوٹ لکھ رہے ہیں کہ اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ خیر و برکت اور سلامتی نازل فرما, یہ کہتے ہیں تمہیں پتہ تو ہے نہیں کہ تم کیا مانگ رہے, میں کیا دوں.
سر جو میں نے خط لکھا اور جو ابا جان نے جواب دیا اس سے میں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, اصل میں میں جس چیز کی اجازت مانگ رہا تھا نا اس کا ابا جان نے مجھے حل بتایا درود شریف کا, اور یہ سونے سے پہلے پڑھنا تھا, اور جب یہ میں نے عمل کیا تو جو میں کشف القبور سے کرنا چاہ رہا تھا نا مجھے وہ عالم خواب کر.
دیکھیں بات یہ ہے کہ مرشد جانتا ہے کہ اصل کھیل کیا ہے, آپ اصل میں کیا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے واضح کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی.
سر میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتی ہوں, مجھے بابا جان نے دو تین دفعہ بس مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم چرا لوہو قلم پڑھو, مجھے
آپ پڑھیں نا لوہو قلم جی, تو آپ پڑھیں.
آپ کا پڑھ رہی ہوں نا وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے.
اللہ کا انعام ہے,
میرے اوپر سے
اللہ کا انعام ہے. دیکھیں یہ میری سعادت ہے, اللہ کا کرم ہے, مرشد کریم نے مجھے اس قابل بنایا, اس طرح تیار کیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بات کو سمجھنے میں ایک سہولت کا باعث بنا, یہ میری سعادت ہے. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کافی ہے آج, کافی ماشاء اللہ ہو گیا, 59 منٹ ہو گئے. چلیں, آپ کا شکریہ جی, اللہ آپ کو خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.
دعاؤں میں یاد رکھو, ہمارے پاکستان کے لیے دعا کرے اللہ, مشکل حالات ہمارے ٹھیک کر دے.
انشاءاللہ اللہ خیر, اللہ خیر کرے. جی جی
میں نے یہ جو ابا جان سے ملاقات میں جو ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں پوچھا تھا کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں تقریر والوں کا